नमस्कार, ये आकाशवाणी पटना है। अब आप अभिषेक दास से प्रादेशिक समाचार सुनिए। पहले मुख्य समाचार। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए 6 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज समस्तीपुर जिले को 188 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और पंचायती राज मंत्रालय ने स्पष्ट किया, बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए पंच और सरपंच वैध मतदाता हैं। अब समाचार विस्तार से। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण 2025-26 पेश करेंगी। मुख्य आर्थिक सलाहकार के मार्गदर्शन में वित्त मंत्रालय के आर्थिक कार्य विभाग ने इस सर्वेक्षण को तैयार किया है। आर्थिक सर्वेक्षण देश की मौजूदा आर्थिक स्थिति और भविष्य के दृष्टिकोण की एक व्यापक समीक्षा है। केंद्रीय बजट 2026-27 1 फरवरी रविवार को पेश किया जाएगा। बजट सत्र का पहला चरण 13 फरवरी तक चलेगा, वहीं दूसरा चरण 9 मार्च से 2 अप्रैल तक होगा। बजट सत्र के दौरान 30 बैठकें होंगी। बिहार विधानमंडल का बजट सत्र 2 फरवरी से शुरू हो रहा है। वित्त मंत्री विजेंद्र प्रसाद यादव 3 फरवरी को राज्य का बजट पेश करेंगे। इस बीच सत्र के सुचारू संचालन और अन्य मुद्दों पर चर्चा के लिए विधान परिषद के सभापति अवधेश नारायण सिंह ने आज सर्वदलीय बैठक बुलाई है। राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए नई नीति बनाने की पहल की है। स्वास्थ्य विभाग ने इस संबंध में उच्च स्तरीय समिति का गठन किया है। विभाग की निदेशक प्रमुख डॉक्टर रेखा झा की अध्यक्षता में गठित इस समिति में 6 सदस्य बनाए गए हैं। विभागीय सचिव हिमांशु शर्मा ने बताया कि समिति में बिहार स्वास्थ्य सेवा संघ के प्रतिनिधियों को भी सदस्य के रूप में शामिल किया गया है। उन्होंने बताया कि 7 निश्चय 3 के तहत सुलभ स्वास्थ्य सुरक्षित जीवन के लक्ष्य के लिए समिति गठित की गई है। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समृद्धि यात्रा के तहत समस्तीपुर जिले का दौरा करेंगे। इस दौरान श्री कुमार 827 करोड़ रुपए लागत वाली 188 विकास परियोजनाओं का उद्घाटन शिलान्यास और कार्यारंभ करेंगे। ब्यौरा हमारी संवाददाता से।
मुख्यमंत्री नीतीश कुमार आज समस्तीपुर जिले को कई विकास योजनाओं की सौगात देंगे। श्री कुमार 470 करोड़ रुपए की लागत वाली 71 योजनाओं का शिलान्यास करेंगे। मुख्यमंत्री 273 करोड़ रुपए की लागत वाली 74 योजनाओं का उद्घाटन और 84 करोड़ रुपए की लागत वाली 43 योजनाओं का कार्यारंभ भी करेंगे। श्री कुमार इसके बाद जनसंवाद कार्यक्रम को संबोधित करेंगे। यात्रा के दौरान मुख्यमंत्री का अधिकारियों के साथ जिले में चल रही विकास योजनाओं की प्रगति की समीक्षा का भी कार्यक्रम है। इस अवसर पर उपमुख्यमंत्री सम्राट चौधरी और विजय कुमार सिन्हा समेत कई जनप्रतिनिधि मौजूद रहेंगे। समाचार कक्ष से मैं डॉक्टर सविता पारीक।
पंचायती राज मंत्रालय ने स्पष्ट किया है कि बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए पंच और सरपंच वैध मतदाता है। पंच सरपंच संघ के प्रदेश अध्यक्ष आमोद कुमार निरालन ने बताया कि मंत्रालय द्वारा इस संबंध में भेजे पत्र में कहा गया है कि पंच और सरपंच को मतदान का संवैधानिक अधिकार है। बिहार सरकार ने केंद्र से पंचायतों में स्वास्थ्य क्षेत्र अनुदान की बकाया 2500 करोड़ रुपए से अधिक की राशि जारी करने की मांग की है। पंचायती राज मंत्री दीपक प्रकाश ने इस संबंध में केंद्रीय पंचायती राज मंत्री राजीव रंजन सिंह से नई दिल्ली में मुलाकात की। उन्होंने केंद्र से पंचायत सरकार भवन के रखरखाव के लिए भी वित्तीय मदद की मांग की है। बिहार और ओडिशा के बीच झारखंड के रास्ते बसों का परिचालन किया जाएगा। परिवहन विभाग ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। विभाग के अनुसार पटना, बिहार शरीफ, भागलपुर, दरभंगा, गया, सासाराम, पूर्णिया, मुजफ्फरपुर और छपरा से बसों का परिचालन होगा। आपदा प्रबंधन विभाग ने कहा कि आपदा प्रभावित लोगों को तुरंत राहत पहुंचाने और बचाव के लिए 20 जिलों में जल्द ही आपातकालीन प्रतिक्रिया सुविधा और प्रशिक्षण केंद्र का निर्माण कार्य पूरा कर लिया जाएगा। पटना में आयोजित संवाददाता सम्मेलन में विभाग के संयुक्त सचिव मोहम्मद नदीमुल गफ्फार सिद्दीकी ने बताया कि 17 जिलों में केंद्र का निर्माण कार्य पूरा हो गया है जबकि पटना में निर्माण कार्य प्रगति पर है। श्री सिद्दीकी ने बताया कि अब बाढ़ प्रभावित परिवारों को 6,000 रूपये की जगह 7,000 रूपये दिए जा रहे हैं। उन्होंने बताया कि वर्ष 2025 में राज्य में डूबने से 2,098 लोगों की मौत हुई। राज्य की प्राचीन और महत्वपूर्ण पांडुलिपियों को संरक्षित कर उसका डिजिटाइजेशन किया जाएगा। संस्कृति मंत्रालय के ज्ञान भारतम अभियान के तहत यह पहल की गई है। मुख्य सचिव प्रत्यय अमृत की अध्यक्षता में इस संबंध में हुई उच्च स्तरीय बैठक में पांडुलिपियों के संरक्षण के लिए कार्य योजना बनाने का निर्देश दिया गया। इस अभियान के लिए कला संस्कृति और युवा विभाग को नोडल एजेंसी जबकि संग्रहालय निदेशक को नोडल पदाधिकारी बनाया गया है। दानापुर बीटा कोयलवर एलिवेटेड कॉरिडोर परियोजना का काम अगले वर्ष जून महीने तक पूरा कर लिया जाएगा। भारतीय राष्ट्रीय राजमार्ग प्राधिकरण NHAI के परियोजना निदेशक अरविंद कुमार ने आकाशवाणी समाचार से बातचीत में बताया कि परियोजना का 45% काम पूरा हो चुका है। उन्होंने कहा कि परियोजना के पूरे होने पर लोगों को जाम से मुक्ति मिलेगी। दानापुर से बक्सर तक की दूरी मात्र 2 घंटे में पूरी होगी।
दानापुर बीटा एलिवेटेड प्रोजेक्ट जो है पटना से जो है कोइलवर भी एक प्रोजेक्ट था उसी का एक पार्ट है। ये भी जानना जरूरी है कि कोइलवर से भोजपुर और भोजपुर से बक्सर ऑलरेडी हम 4 लेन 3 साल पहले ही कंस्ट्रक्ट कर चुके। अब ये 25 किलोमीटर का हमारा मिसिंग लिंक है, इसलिए ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट है ताकि ये प्रोजेक्ट के बनने के बाद ही हम जो है बिहार के जो है वेस्टर्न कॉर्नर में जो कि बक्सर आता है वहां पर हम अनइंटरप्टेड जो है 4 लेन रोड को जो है का रोड यूजर को जो है सर्विस प्रोवाइड कर पाएंगे। हमने टारगेट रखा है कि जून 2027 को कंप्लीट करके इसको ट्रैफिक ओपन कर दें।
महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री और राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी NCP प्रमुख अजीत पवार का अंतिम संस्कार आज सुबह लगभग 11 बजे पुणे जिले के बारामती में पूरे राजकीय सम्मान के साथ किया जाएगा। श्री पवार का कल एक विमान हादसे में निधन हो गया था। महाराष्ट्र सरकार ने उप मुख्यमंत्री के निधन के बाद सार्वजनिक अवकाश की घोषणा की है। राज्य में 3 दिन का राजकीय शोक रहेगा। प्रादेशिक समाचार आप आकाशवाणी पटना से सुन रहे हैं। ताजा समाचारों के लिए आप हमारे एक्स हैंडल @AIRNews_पटना पर जा सकते हैं। पश्चिमी विक्षोभ के प्रभाव से राज्य के उत्तरी हिस्सों में हुई हल्की बारिश के चलते ठंड में बढ़ोतरी हुई है। मौसम विभाग के अनुसार अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की गिरावट दर्ज की गई है। विभाग ने अपने पूर्वानुमान में कहा है कि अगले 3 दिनों के दौरान राज्य के अधिकतम तापमान में 2 से 4 डिग्री सेल्सियस तक की बढ़ोतरी होगी। वहीं न्यूनतम तापमान में किसी विशेष परिवर्तन की संभावना नहीं है। पाटलिपुत्र विश्वविद्यालय पटना का 5वां दीक्षांत समारोह आज आयोजित किया जा रहा है। समारोह में राज्यपाल सह कुलाधिपति आरिफ मोहम्मद खां मुख्य अतिथि होंगे। दीक्षांत समारोह में विभिन्न संकायों के 31 विद्यार्थियों को स्वर्ण पदक प्रदान किए जाएंगे। इनमें 21 छात्राएं शामिल हैं। समारोह में 71 शोधार्थियों को PhD की उपाधि प्रदान की जाएगी। 4 वर्षीय स्नातक कार्यक्रम के 4थे सेमेस्टर में क्षमता संवर्धन पाठ्यक्रम में नए विषय शामिल किए गए हैं। इसके तहत अब छात्र सामाजिक सेवा, स्वास्थ्य और कल्याण तथा गैर सरकारी संगठनों से संबंधित विषय की पढ़ाई कर सकेंगे। लोक भवन ने इस संबंध में अधिसूचना जारी कर दी है। माध्यमिक शिक्षा निदेशालय ने स्थानीय निकाय के शिक्षकों के लिए आयोजित 3रे और 4थे चरण की सक्षमता परीक्षा में सफल शिक्षक अभ्यर्थियों की काउंसलिंग का कार्यक्रम जारी कर दिया है। काउंसलिंग की प्रक्रिया 6 फरवरी से शुरू होकर 11 फरवरी तक चलेगी। नीट की तैयारी कर रही छात्रा की पटना में संदिग्ध परिस्थितियों में हुई मौत के मामले में 10 और लोगों के ब्लड सैंपल DNA जांच के लिए लिए गए हैं। इसमें हॉस्टल संचालिका का पुत्र भी शामिल है। अब तक 25 लोगों के ब्लड सैंपल एकत्र किए जा चुके हैं। इधर SIT ने इस मामले में हॉस्टल के मकान मालिक के पैतृक आवास जहानाबाद के खरका गांव में छापेमारी की। इस दौरान पुलिस ने कई महत्वपूर्ण कागजात जब्त किए हैं। दूसरी तरफ एसआईटी ने पटना के राजेंद्र नगर स्थित एक निजी अस्पताल के चिकित्सकों से भी पूछताछ की है जहां छात्रा का इलाज चला था। इस बीच राज्य महिला आयोग की अध्यक्ष अप्सरा ने पुलिस महानिदेशक विनय कुमार से मुलाकात कर अब तक इस मामले में हुई जांच संबंधी प्रगति की जानकारी ली। दरभंगा के वरीय पुलिस अधीक्षक जगुनाथ रेड्डी जलारेड्डी ने बेंता थाना अध्यक्ष हरेंद्र कुमार को एक महिला चिकित्सक और उसके कार चालक के साथ अभद्र व्यवहार करने के आरोप में निलंबित कर दिया है। केंद्रीय जांच ब्यूरो ने भोजपुर जिले के कोल्हारामपुर गांव निवासी शिक्षक कमलेश राय के अपहरण के मामले में लखीसराय टाउन थाना में पदस्थापित दारोगा अंजलि कुमारी को गिरफ्तार किया है। जमशेदपुर के उद्यमी कैरव गांधी के अपहरण के मामले में झारखंड पुलिस ने नालंदा, गया और औरंगाबाद में छापेमारी की है। इस मामले में 6 लोगों को हिरासत में भी लिया गया है। पटना स्थित सीबीआई अदालत ने घुसखोरी के मामले में आरोपी एनआईए के पूर्व डीएसपी अजय प्रताप सिंह, हिमांशु सिंह और दीपू सिंह पर आरोपों का गठन कर दिया है। इन सभी पर एक निर्माण एजेंसी के मालिक को धमकी देकर 2.5 करोड़ रुपए रिश्वत मांगने का आरोप है। शेखपुरा की पॉक्सो अदालत ने एक बच्ची के अपहरण के मामले में एक महिला समेत 2 लोगों को दोषी पाते हुए 10-10 साल कारावास और 5,000 रुपए अर्थदंड की सजा सुनाई है। औरंगाबाद नगर थाना क्षेत्र अंतर्गत पीपड्डी मोड़ के पास एक अनियंत्रित ट्रक की चपेट में आने से स्कूटी सवार महिला दारोगा रिंकी कुमारी की मौत हो गई। इस हादसे में एक सिपाही गंभीर रूप से घायल हो गए। पश्चिम चंपारण जिले के वाल्मीकिनगर टाइगर रिजर्व में एक बाघ की मौत हो गई। बाघ का शव गेहूं के खेत से बरामद किया गया है। मौत का कारण करंट लगना माना जा रहा है। अब पटना से प्रकाशित प्रमुख समाचार पत्रों की सुर्खियां। आज के सभी समाचार पत्रों ने महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री अजीत पवार की विमान दुर्घटना में हुई मौत की खबर को प्रमुखता से प्रकाशित किया है। हिंदुस्तान लिखता है, बारामती में विमान की क्रैश लैंडिंग, महाराष्ट्र के उप मुख्यमंत्री समेत 5 की गई जान। दैनिक जागरण की सुर्खी है, यूजीसी के नियमों के खिलाफ आज सुनवाई करेगा सुप्रीम कोर्ट। प्रभात खबर ने लिखा है, गया में घूस लेने की शिकायत पर मंच से ही डिप्टी सीएम ने आमस के सीओ को हटाया। दैनिक भास्कर ने लिखा है, गुंडों से वसूली कराने पर लगेगी रोक, सरकार ला रही है कानून। राष्ट्रीय सागर ने राष्ट्रपति द्रौपदी मुर्मू के अभिभाषण को प्रमुखता देते हुए लिखा है, सरकार सामाजिक न्याय के लिए प्रतिबद्ध। आज अखबार की सुर्खी है, बिहार के कई कोर्ट को बम से उड़ाने की धमकी। और अब अंत में मुख्य समाचार एक बार फिर। केंद्रीय वित्त मंत्री निर्मला सीतारामन आज संसद में आर्थिक सर्वेक्षण पेश करेंगी। 1 फरवरी को पेश होगा आम बजट। राज्य सरकार ने सरकारी चिकित्सकों की निजी प्रैक्टिस पर रोक लगाने के लिए 6 सदस्यों वाली उच्च स्तरीय समिति का गठन किया। मुख्यमंत्री नीतीश कुमार समृद्धि यात्रा के तहत आज समस्तीपुर जिले को 188 विकास परियोजनाओं की सौगात देंगे। और पंचायती राज मंत्रालय ने स्पष्ट किया, बिहार विधान परिषद के स्थानीय निकाय निर्वाचन क्षेत्र के चुनाव के लिए पंच और सरपंच वैध मतदाता हैं। इसके साथ ही आकाशवाणी पटना से प्रसारित प्रादेशिक समाचार का ये अंक समाप्त हुआ। आकाशवाणी पटना से अगला समाचार बुलेटिन दोपहर 2 बजे प्रसारित किया जाएगा। नमस्कार।